ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமினி சந்தோஷி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
ஹமே சன்சார் மே சார் பாத்தோ கோ படி அச்சி தர விசார் கர் லேனா சாஹி, और इन चार बातों में निर्भ्रांत हो जाना चाहिए हमारी बुद्धि. पहली बात, परमात्म तत्व क्या है. दूसरी बात, माया तत्व क्या है. और तीसरी बात, यह आत्म तत्व क्या है. और ये जगत क्या है. ये पहली बात है कि ये जगत क्या है. जगत, जीव, माया और परमात्मा, इन चार बातों को हम समझें तो. और ये उपनिषद हमें यही बताती है कि पहली बात, यदि आप माया और जीव को, जगत को, जगत जो हमें दिखाई पड़ रहा है, इनको ठीक तरह से समझ लें तो आत्मा और परमात्मा, इन दोनों में यदि परमात्मा में से पर शब्द हटा दो और आत्मा से यदि पहला शब्द निकाल तो बच क्या जाता है. जीवात्मा से जीव शब्द को हटा दो, परमात्मा से पर शब्द को हटा दो, तो बाकी बचता क्या है, केवल आत्मा. तो जीव को जैसे परमात्मा को ईश्वर की उपाधि मिली है, उसी प्रकार इस जीव, इस आत्मा को जीव की उपाधि मिली है. ईश्वर को ईश्वर की उपाधि और जीव को जीव की उपाधि. तो ईश्वर और जीव दो भिन्न भिन्न कहला रहे हैं. ईश्वर अलग है और जीव अलग है. बोले कब तक अलग है. माया विशिष्ट के ताके कारण वह परमात्मा ईश्वर कहला रहा है, वास्तव में नहीं है पर कहलाता है. उसी तरह से कर्ता भोक्ता की उपाधि से ये जीव कहलाता है, है नहीं पर जीव कहलाता है. किसके कारण? कर्ता और भोक्ता के कारण. यदि कर्ता और भोक्ता की उपाधि को अपने से अलग कर दो तो वो क्या है? शुद्ध परात्पर परब्रह्म परमात्मा तत्व है, आत्मा है. और उसी तरह से ईश्वर में से माया की जो कार्य उपाधि है उनको हटा दिया जाए तो वो क्या है? परब्रह्म परमात्मा तत्व है. तो वो परमात्मा और वो इस आत्मा, आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है. अर्थात परमात्मा ही सर्व, जहां जहां पर परमात्मा शब्द का प्रयोग उपनिषद में आया है वहां आत्मा ही समझना चाहिए. अथवा जहां जहां आत्मा शब्द का प्रयोग आया है वहां परमात्मा ही समझना चाहिए. परमात्मा और आत्मा में कोई भेद नहीं. वस्तुतः बात इतनी है कि ये किसी एक छोटे से बच्चे से भी पूछो ना, हमारे यहाँ संस्कार ऐसे हैं कि छोटे से बच्चे से भी पूछो तो वो ये तो कह देगा कि परमात्मा भगवान कहाँ है. उससे पूछने पर वो ये तो कह देगा वो मेरे अंदर है, मुझ में है, इतना तो कह देगा. पर इस आत्मा को परमात्मा के है ये केवल सुना गया है, ये हमारे सुनने में आया, हमने इसी श्रुति केवल सुना है. परंतु सुनने के साथ साथ ऐसा ठीक ठीक हमें अनुभव भी तो हो, ऐसी हमारी अनुभूति भी तो हो. बोले वो कब होगी? जितनी जितनी हमारी दृढ़ता होगी, जितना जितना हमारा अभ्यास होगा, जिस अभ्यास के साथ जितनी हमारी बुद्धि धीरे 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 उस सत्य में स्थिर होगी, त्यों त्यों वो हमें अनुभूत आत्मानुभूति, उसकी अनुभूति के तल पर. हमारा ये अनुभव नहीं बोलता, ये हमारे सुने हुए पढ़े हुए शब्द बोलते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, पर जिस समय ये आत्मानुभूति हो जाएगी, जिस समय आप ऐसा अपने आप में अनुभव करेंगे, उस समय आप ब्रह्म के अतिरिक्त ब्रह्मविदं ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म का अनुभव करने वाला, वो अनुभव स्वरूप है, याद रखना। वो अनुभव स्वरूप कौन है? बोले कोई और नहीं है, आप ही हैं। तो उससे उसको अलग नहीं किया जा सकेगा। ऐसे समय में अब स्वयं ही, इसलिए ईश्वर की उपाधि है, इसलिए परमात्मा कहलाता है, और जीव के पास जीव कर्ता भोक्ता की उपाधि है, इसलिए वो जीव कहलाता है। यदि ये सारी उपाधियों को हटा दिया जाए तो वो केवल परब्रह्म परमात्मा है। कैसे है? एक बात और समझे इसको छोटे से उदाहरण के लिए। एक गुरुदेव अपने शिष्य को यही आत्मा परमात्मा इन शब्दों को समझा रहे थे। शिष्य ने कहा, गुरुदेव समझ में? तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा जाओ, पढ़ा अध्ययन कराना बंद किया, कहा कि जाओ गंगा जी से, मैं गंगा ले आओ, गंगा जी से गंगा ले आओ। समझ गया कि गुरुदेव कह रहे हैं गंगा जी से गंगा जी ले आओ, तो वो गया और गंगा जी में उसने अपना कमंडल डाला, भरा और गुरुदेव के पास ले आया। गुरुदेव ने जैसे दिया, गंगा जी ले आया हूं, गुरुदेव ने कहा गंगा जी ले आए? बोले हाँ गंगा जी ले आया हूं। गुरुदेव ने कहा है गंगा? गंगा में तो बड़ी बड़ी मछली है, गंगा जी की तो बड़ी तीव्र गति है, गंगा जी तो उन्होंने कहा कि इसमें तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, ये तो कहाँ गंगा है? बोले नहीं गुरुदेव, मैं गंगा ही लिया है, गंगा कहाँ, इसमें तो मछली वगैरह कुछ भी नजर नहीं आती। कहा गुरुदेव ये तो कमंडल है। कहा गुरुदेव आप कमंडल की उपाधि छोड़ दो, तो ये जो जल है और वो गंगा का जो जल है, उस जल जल में तो कोई अंतर नहीं है ना। वो गंगा जी कमंडल के अंदर आ गई तो इसलिए वो कमंडल का जल कहला रहा है। यदि वो कमंडल का उपाधि हटा दो तो वो उसके अंदर का जल और गंगा के जल में कोई फर्क है? कोई भेद है? एक ही तो है। कहा गुरुदेव इस उपाधि को छोड़ दो ना, कमंडल को हटा दो। तो कहा बेटा यही तो मैं तुझे समझा रहा था कि तू केवल इस उपाधि को छोड़ दे। उपाधि कुछ, उपाधि में क्या है? व्याधि है। जहां जहां उपाधियां हैं वहीं वहीं व्याधियां हैं, वहीं वहीं बीमारियां हैं। तो हमको ये बीमारी लग गई है। क्या बीमारी लग गई है? मैं देह हूं, मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बच्चा हूं, मैं ये हूं, हम अमुक अमुक तमुक कितना लंबा चौड़ा अपने आप को कर रखा, ये सब हमारे को क्या पकड़ रखा? बोले यही व्याधि है, इसी से आधी है, इसी से व्याधि है, और इसी को पकड़ के इसी को मान के हम लोग चल रहे हैं। जब तक ये नहीं छूटेगी उपाधि, निरुपाधिक जिसमें कोई उपाधि नहीं है, बोले वो कौन है? वो हमारा अपना शुद्ध परात्पर स्वरूप है। तो माया की उपाधि किसके साथ है? बोले माया जो कि शब्द की जो उपाधि जुड़ी हुई है वो ईश्वर के साथ जुड़ी हुई है। और जब ईश्वर माया की उपाधि से, ईश्वर ही माया की उपाधि से, ईश्वर स्वयं अपनी इच्छा के साथ माया के साथ जुड़ जाता है तो वो माया कहलाता है। और माया कहला करके ये सकल जगत क्या है, हम कह देते हैं परमात्मा की माया है। जिसे तुम माया कह रहे हो वो माया क्या परमात्मा से विलग है, अलग है? बोले नहीं, ईश्वर सर्वभूत है, वो सबके अंदर जो व्याप्त है ना। भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु सृजन्ति, कि ब्राह्मय सर्वभूतानि यंत्र ऋणानि माया। ब्राह्मय सर्वभूतानि, सबको भ्रमित करने वाली कौन है? बोलिए माया है। और इस माया के कार्य क्या है? बोले माया का कार्य है सृष्टि को उत्पन्न करना, माया का कार्य है इसका विस्तार करना, माया का कार्य है इसको समेट लेना, माया का कार्य है माया कैसी है? बोले माया तीन गुणों, दैवी गुण है सा मम माया दुरत्तया, दैवी गुणों से युक्त। और ये दैवी गुण क्या है इस माया के अंदर? बोले सत्य रज तम, तीनों गुण जिसमें दिखाई पड़ते हैं इस माया में। माया में तीनों गुण दिखाई देते हैं और तीनों गुण गुणेश प्रवृत्ति, भगवान कहते हैं गुण गुणों में अपने आप चल रहे हैं, भी चलाने नहीं पड़ते हैं। ये गुण अपने एक दूसरे के साथ इन गुणों की संधि है, सत के साथ रज की तम की तीनों की ऐसी संधि है और ये तीनों गुण एक साथ बरत रहे हैं, चल रहे हैं, से सकल सृष्टि का सर्वत्रता का खेल दिखाई दे रहा। माया इसी का नाम है नारायण। पर कहने का तात्पर्य ये है कि माया को भगवान से, परब्रह्म परमात्मा से, जब तक उसको माया रूप में भी वो, और जिसे हम माया की संज्ञा दे रहे हैं, वो माया परमात्मा से विलग नहीं है, अलग नहीं है, वह भी उसी में है। पर उसको जब तक हटा करके नहीं देखेंगे, माया का रूप अर्थात एक नट का रूप धारण करके, परमात्मा आए तो सही। राजा मोरद ध्वज के पास आपने सुना है कथा में, वो क्या बन करके आए? बोले राजा मोरद ध्वज के सामने सिंह बन करके आ गए और शिवी के आगे कबूतर बन करके आ गए। आया तो परमात्मा ही, पर दूसरा रूप बना करके, अन्य बनकर, अन्य बनकर। माने अन्य क्या है? अन्य किसी भी रूप, अन्य कहते हैं जो परमात्मा से भिन्न हमें दिखाई पड़ रहा है, वो अन्य। अन्य का नाम ही माया है। जगत अन्य, जगत परमात्मा से अलग हमें दिखाई पड़ता, पर है नहीं, दिखता है। पर दिखने पर हम इससे भ्रमित हो जाते हैं कि माया तो माया है, माया नहीं है, स्वयं परमात्मा ही है ये जगत संपूर्ण। इसलिए माया को समझना है और आत्मा और परमात्मा को एक कर ले। माया से कौन व्याप्त हो रहा, दिख रहा है? बोले ये जगत दिख रहा है, संसार दिख रहा है। माया जब तक दिखेगी तब तक याद रखना ये जगत भी दृष्टिगत होता जाएगा, संसार दिखेगा। और जब माया समाप्त, माया का भेद समझ में आ जाएगा, तो हमें ये दिखाई देने वाला जगत फिर ऐसा नहीं दिखाई देगा जैसा कि अब हमें दिखाई दे रहा है। अब हमको ये जगत बिरा बड़ा अलग अलग दिखाई पड़ता है। जिस दिन हमारी दृष्टि माया के तत्व को समझ करके उसको पार कर जाएगी, उस दिन हमें ऐसा जगत नहीं दिखाई पड़ेगा जैसा हमें दिखाई पड़ता है। बोले कैसा दिखाई पड़ता है? जो जगत हमें परिवर्तनशील दिखाई पड़ रहा, उसके बाह्य रूप में दृष्टि नहीं रह जाएगी, दृष्टि पार कर जाएगी। जैसे वह आध्यात्मिक दृष्टि, भौतिक दृष्टि में ये फूल है, हमें दिखाई पड़ रहा है कि फूल है, और यदि तात्विक दृष्टि से हम उसी दृश्य को देख करके, केवल उस दृश्य को हमारी में दृष्टि टिक जाए, तो वो हमारी विशेषता नहीं होगी। उस दृश्य के को पार करके उस तत्व में, उस फूल को खिलाने के पीछे, और इस फूल की जो सुंदरता है, उस सुंदरता के पीछे हमारी दृष्टि जाए, इस फूल को किसने बनाया, इसकी रचयिता के ऊपर हमारी दृष्टि जाए, तो वो उसके पीछे, केवल फूल को देखना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसको देख करके दिखान, जो इसको दिखा रहा है अर्थात फूल को बनाने वाला जो है, उस पर हमारी दृष्टि चली जाए, अर्थात जगत को देखकर जगत के पीछे जो छुपी हुई माया है, और उस माया के पीछे जो छुपा हुआ परम ब्रह्म परमात्मा तत्व परम प्रकाशमय है, उस पर हमारी दृष्टि जाए, तो वह और मैं उसको जो वह जो मैं मेरे अंदर मैं में निहित है विद्यमान है अर्थात मेरा अपना प्रकाश अपना ज्ञान स्वरूप यदि हम उस तत्व को देखते हैं तो परमात्मा और आत्मा एक है माया और जगत एक है और यदि चारों पर विचार करें तो कहने भर के लिए बोलने भर के लिए बहुत आचार्यों ने तीन चीजों को स्वीकार किया है परमात्मा जीवात्मा और बीच में उसकी माया त्रिद्वैतवाद परंतु भगवान भाष्यकार का अद्वैतवाद है अद्वैताविशिष्ट द्वैताद्वैत अद्वैतावाद शुद्धा शुद्धा विशिष्टावाद इस प्रकार आचार्यों का भिन्न भिन्न मत है परंतु हम यहाँ भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य के मत को ही सर्वोपरि मानते क्योंकि भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य ने अपने इस अद्वैत विशिष्ट अद्वैतात् विवर्तवाद उनका जो था जिस पर उन्होंने संकट दिग्विजय को प्राप्त किया अर्थात इस भारत भूमि को विश्व गुरु की पदवी प्रदान की भगवान आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य के इस मत के साथ उनके विचार के साथ विचार करते हुए देखेंगे तो जीव और ब्रह्म दो भिन्न भिन्न नहीं है जीव और ब्रह्म भिन्न न होने के कारण ही इसी सिद्धांत को लेकर उन्होंने दिग्विजय प्राप्त किया था जीवो ब्रह्म प्राप्त अर्थात जीव और ब्रह्म दो नहीं है एक ही है उपनिषद भी यही कहती है कि जीव और ब्रह्म ये दोनों उपाधियां हैं जीव भी उपाधि है और जो ईश्वर है वह जिसे हम ब्रह्म कहते हैं परमात्मा वो भी एक निरतिशय व्यापक होने के कारण ब्रह्म कह देते हैं ब्रह्म शब्द का भी अर्थ होता है कि जो व्यापक है सचराचर में है अर्थात वह परम जिसे सत्य कहें ब्रह्म कहें ज्ञान कहें परब्रह्म कहें वो ब्रह्म जो पर है ब्रह्म है अर्थात अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म कहा गया है अपर ब्रह्म अर्थात जहां से अज्ञान से जिससे सकल सृष्टि की उत्पत्ति है वह पर ब्रह्म और पार ब्रह्म माने जो परा है जिसे और जो अपर ब्रह्म है उसे ब्रह्म कहा गया पार ब्रह्म और अपर ब्रह्म कहकर इन दो शब्दों के साथ संबोधित किया है वो परब्रह्म और परमात्मा जीव कोई अलग अलग नहीं है वो भिन्न एक ही है एक ही तत्व है कहलाने के लिए दो कहलाता है इसलिए ऐसे सनातन तत्व के ऊपर विचार करते हुए त्रिविध ताप समाप्त हुए हमारे यहाँ शांति पाठ करने की एक व्यवस्था है शांति पाठ हर पाठ से पूर्व मतलब शांति पाठ से करने से त्रिविध ताप शांत हुए आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक ये त्रिविध ताप है दुख है ताप का मतलब दुख और ये तीनों दुख हमारे जीवन में आते क्यों हैं? दुखों का आने का कारण क्या है बोले दुख कोई व्यक्ति नहीं चाहता फिर भी उसके जीवन में दुख आते हैं दुखों का आने का कारण है कि बोले पूर्व पूर्व जन्म के पाप ही इस जन्म में ताप बनकर दुख बनकर आते हैं जब ये दुख हमारे जीवन में आते हैं इनसे हम संतप्त रहते हैं दुखी रहते हैं अशांत रहते हैं तो ये त्रिविध ताप हमारे तीनों प्रकार के दुख हमारे जीवन से दूर चले जाएं उसके लिए क्या प्रार्थना की गई शांति पाठ की व्यवस्था के ये त्रिविध ताप शांत हो जाएं इनकी तपस इनका कष्ट हमें व्याप्त न हो उसके लिए सबसे पहले शांति पाठ करते हुए तीन बार ओम शांति 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 माने त्रिविध ताप शांत होए उसके लिए भगवान से प्रार्थना की गई है और ईशावास्य उपनिषद के शांति पाठ में भगवान के उस परब्रह्म परमात्म स्वरूप की उपासना करते हुए कहा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात वो वशिष्ठ जिससे वह भी पूर्ण है, यह भी पूर्ण है, और प्रत्यक्ष में ये दिखाई पड़ने वाला भी जो उत्पन्न हुआ है वह भी पूर्ण है, वो प्रलय काल में भी पूर्ण है, और जब सकल सृष्टि उस ब्रह्म परमात्मा में मिल जाती है, प्रलय हो जाता है, तो तब बचता शेष क्या है? बोले केवल पूर्ण ही बचता है, पूर्ण अवशिष्यते, शेष पूर्ण ही बचता है। ऐसे पूर्ण स्वरूप का परमात्मा का हम स्मरण करते हैं, और जिससे कि हमारे तीनों ताप शांत हुए, तीनों दुख शांत हुए, और शांत होने पर ही हम परमात्मा के स्वरूप पर विचार कर सकते हैं। जब तक ये तीनों तापों से हम संतप्त रहेंगे, दुखी रहेंगे। अच्छा, जीव दुखी है, बोले दुख का कारण एक ये भी है, बोले हमारे जीवन में दुख आते हैं, बोले दुख को कोई भेजता है, दुखों का कारण क्या है? यदि हम ये सोचें तो एक तो ये है कि हमारे पूर्व जन्म के पाप हैं, और दूसरा कारण ये है कि हमारी नासमझी है, हमारा अज्ञान है, अज्ञान के कारण दुखी है। ये अज्ञान किसका अज्ञान? बोले स्वरूप का अज्ञान, अपना अज्ञान। जब तक स्वस्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, आत्मविद्या जिसे कहा गया है, अध्यात्म विद्या का, अपने स्वरूप के ज्ञान से ही अज्ञान दूर होगा। जैसे सूर्य के उदय होने से ही अंधकार दूर होगा, एकमात्र उसका साध उपाय है। सूर्य उदय हुए बिना अंधकार का अस्त नहीं हो सकता, उसी प्रकार स्वस्वरूप के ज्ञान के बिना स्व का अज्ञान दूर नहीं होगा, और जब तक स्व का अज्ञान दूर नहीं होगा तब तक हमें आत्यंतिक दुखों से निवृत्ति नहीं हो सकती। आत्यंतिक दुख निवृत्ति का मतलब यही समझना चाहिए कि परम परमानंद की प्राप्ति। परम परमानंद की प्राप्ति क्या है? बोले स्वस्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में, अपने आप में अपने को पहचान, अर्थात स्वस्वरूप में हम स्थित हुए। स्वस्वरूप में स्थित होने के लिए जो अज्ञानता के कारण, नासमझियों के कारण, जो हमने अपने ऊपर चारों ओर से आरोपित कर लिया है, जैसे माया को अपने पर आरोपित करके ईश्वर ने अपने को जगत रूप में उपस्थित कर दिया, उसी प्रकार हमने अपने अज्ञानता के कारण चारों ओर से परतें लपेट करके अज्ञान के कारण अपने आप को जीव रूप में उपस्थित कर लिया, और जीव रूप में उपस्थित करके अपने को कभी सुखी, कभी दुखी, कभी जन्मने वाला, कभी मरने वाला, कभी जानने वाला, कभी नहीं जानने वाला, कभी तो हम अपने को ज्ञानी समझते हैं, कभी अपने को अज्ञानी समझते हैं, कभी अपने को सुखी समझते हैं, कभी अपने को दुखी समझते हैं। तो बोले क्या करना होगा इन सब के लिए? हम एक एक करके, और ये अज्ञान कब का है? बोले जीव का ये अज्ञान एक अनादि काल से, बहुत समय से। ये अज्ञान भी कब से है? बोले अनादिकाल से चला आ रहा है। इसकी स्वतंत्र सत्ता है? बोले कि ये कब तक रहेगा? बोले जैसे स्वप्न तभी तक रहेगा जब तक हम सोते रहेंगे, जागने के साथ ही वो समाप्त हो जाएगा। बोले ये अज्ञान कब तक रहेगा? बोले तब तक ये उस रहेगा जब तक हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। बोले ये कब से चला आ रहा है? जब हम सोए थे तभी स्वप्न शुरू हुआ था, जागने के साथ समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार हमारे जब आत्मनिष्ठा, आत्मा के स्वरूप को, निज स्वरूप को जानते ही हमारे जन्म जन्म की जो भ्रांति, अज्ञान है, उसकी निवृत्ति हो जाएगी, समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस ज्ञान के लिए केवल मात्र इस आत्म स्वरूप के ज्ञान के लिए मनुष्य शरीर में ही संभव हो सकता है, ये ज्ञान किसी अन्य शरीर में नहीं हो सकता। कोई कहे कि हम आत्मज्ञान कर लेंगे, आत्मज्ञानी होने के उपरांत तो फिर कोई भी शरीर में जाना पड़े, माने कोई भी शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता। परंतु जब तक स्वस्वरूप का बोध नहीं हो तब तक हमें केवल इस मनुष्य शरीर से ही स्वस्वरूपानुभूति की जा सकती है, किसी दूसरे शरीर में नहीं। इसलिए नारायण मनुष्य शरीर को बहुत बहुत महत्वपूर्ण कहा गया। और ऐसा महत्वपूर्ण शरीर पाकर के भी हम अपने जीवन के संताप दूर नहीं कर सके, इन तापों को मिटा नहीं सके, तो फिर कौन सा शरीर होगा जिसमें हमारे ताप शांत हो, हमारे दुख निवृत्त हो, दुख समाप्त हो। यदि मनुष्य शरीर में दुखों को दूर न कर सके तो फिर कोई दूसरे शरीर में नहीं हो सकता। इसलिए आइए इस मनुष्य शरीर में आकर अपने त्रिविध ताप समाप्त कर ले। और वो त्रिविध ताप समाप्त करने के लिए पहले भगवान के चरणों में, परब्रह्म परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करें, और फिर उसके बाद विचार करें। क्या विचार करें? ईशावास्यमिदं सर्वम् प्रथम मंत्र है, इस पर कल चर्चा करेंगे। आज वाणी को यहीं विराम देती हूँ। बोले हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।